हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कृषा को युग से अलग हुए लगभग 2.5 साल का वक्त बीत चुका था। 2.5 साल में काफ़ी कुछ बदल चुका था। माफिया किंग बनने के बाद युग ने पूरी माफिया की दुनिया को कंट्रोल कर रखा था। इस टाइम में युग ज़्यादातर काम अपने विला से ही मैनेज करता था और लोगों से मिलने भी बहुत कम जाता था। युग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी, इसलिए मलिक के कहने पर उसने एक पार्टी थ्रो की थी। पार्टी में उसे एक कृषा की तरह दिखने वाली लड़की मिली थी, लेकिन वो कृषा नहीं थी। वो रहस्यमयी लड़की युग को बर्बाद करने की चुनौती देकर वहां से जा चुकी थी। जब युग पार्टी में उस लड़की में बिजी था, उसका ज्यादातर सिक्योरिटी स्टाफ पार्टी की सिक्योरिटी में लगा हुआ था, तो उसके विला की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। वैसे भी युग वहां नहीं था। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक लड़की किसी आदमी के साथ युग के विला में घुसने के इरादे से उसके पास खड़ी थी। उसके साथ वाला आदमी सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उसका ध्यान भटकाने लगा। लड़की ने ब्लैक कलर की पैंट्स पर व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट कोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क लगा था और आंखों पर गॉगल्स लगा रखा था। बाल आगे से ब्रीडिंग करके पोनीटेल में बंधे हुए थे। वो आदमी सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसके विला के आगे बेहोश हो गया और उसने अपने मुंह में ऐसा कैप्सूल ले रखा था जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा था। विला के मेन गेट के आगे खड़े दो गार्ड उसको देखकर तुरंत उसके पास आए। इस बीच वो लड़की विला के गेट पर पहुंची। कैमरे सिर्फ 30 मिनट के लिए बंद हैं और मुझे इस बीच अंदर जाना ही होगा, इससे ज्यादा वो कैमरास को बंद नहीं कर पाएगा, लड़की खुद से बड़बड़ाकर बोली। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी, इतनी तैयारी के साथ कि उसके आदमियों ने आधे घंटे के लिए युग के विला के कैमरा हैक करके उन्हें बंद तक कर दिया था। हालांकि ये एक मुश्किल काम था, फिर भी विला में ही काम करने वाले एक हाउस हेल्पिंग स्टाफ की मदद से उन्होंने ऐसा किया था। कैमरा बंद होने और गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाने के बाद लड़की अंदर चली गई। उसके साथी ने लगभग 5 से 7 मिनट के बीच उनका ध्यान भटका कर रखा था। वो लड़की अंदर तो पहुंच गई थी, लेकिन उसकी मंजिल जहां थी वो उस रास्ते को नहीं जानती थी। उसे युग के विला में बनी स्पेशल सेल में पहुंचना था। उसने अपने पॉकेट से एक मैप निकाला और उस स्पेशल सेल को ढूंढती हुई विला के पिछली तरफ पहुंची। वो विला के बेसमेंट में बनाया हुआ था। वो लड़की अपना मास्क और गॉगल्स उतारते हुए बोली, किसी भी जंग को शुरू करने से पहले अपनी कमजोरी को सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब यहां तक आ गई हूं तो आपको यहां से वापस लेकर जाऊंगी अर्जुन भैया। वो कृषा थी जो अर्जुन को बचाने के लिए युग के विला तक में घुस आई थी। उसके चेहरे पर आज भी वही मासूमियत थी। 2.5 सालों में कुछ नहीं बदला था सिवाय कृषा की पर्सनैलिटी के। स्पेशल सेल में घुसने से पहले कृषा ने इधर उधर देखा। वो उस विला में पिछली बार आई थी तब काफी घबराई हुई थी, लेकिन आज इतना रिस्क लेने के बाद भी उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और स्पेशल सेल का दरवाजा खोलने के लिए उसे हाथ लगाया। जैसे ही उसने गेट को हाथ लगाया, उसे बिजली का झटका लगा। बिजली का झटका लगते ही कृषा 2 कदम लड़खड़ाकर दूर हो गई, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। यही वो वक्त था जब वो अंदर जा सकती थी, क्योंकि युग पार्टी में उस लड़की के साथ लगा हुआ था। प्लीज सारा, थोड़ी देर तक युग का ध्यान अच्छे से भटका कर रखना। माइक ने आधे घंटे का टाइम दिया था जिसमें से 10 मिनट बीत चुके हैं। मुझे अगले 20 मिनट में अर्जुन भैया को यहाँ से बाहर निकलना होगा, कृषा ने धीरे से कहा और दरवाजा खोलने के लिए फिर से उस पर हाथ रखा। वो जानती थी कि दरवाजे को टच करते ही उसे करंट का झटका लगेगा, लेकिन फिर भी अर्जुन को बाहर निकालना भी जरूरी था। कृषा ने जैसे तैसे करंट को बर्दाश्त किया और गेट को थोड़ा सा खोल दिया था। वो अंदर चली गई। उस जगह की सिक्योरिटी के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए हुए थे। उस इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले दरवाजे और वहां लगे सिक्योरिटी कैमरास के अलावा कोई ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं थी। जैसे ही कृषा अंदर गई, वहां का नजारा देखकर एक पल के लिए वो कांप गई। वहां अलग अलग तरह की जेल बनाई गई थी जिसके अंदर काफी आदमियों को रखा गया था और उनके टॉर्चर का अच्छा खासा इंतजाम किया गया था। इतने लोगों के बीच कृषा को अर्जुन को ढूंढना था और ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। फिर उसने ध्यान दिया कि हर एक सेल के आगे वहां रखे गए इंसान का नाम और उनके वहां आने का टाइम लिखा हुआ था। कृषा जल्दी जल्दी उन्हें चेक करने लगी। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उसे अर्जुन की सेल दिखाई दी। अर्जुन को मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया था। वो काफी टाइम से वहां था, इसलिए उसके हाथ पैरों पर उन जंजीरों के निशान बन गए थे। उसके माथे और शरीर के बाकी हिस्सों से खून निकल रहा था। उसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक शॉर्ट्स पहन रखा था। ऐसे लगता था जैसे उसे रोज मारा जाता हो। उसके शरीर पर बेल्ट से मारने के निशान भी बने हुए थे। उसको इस हाल में देखकर कृषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न ले ली हो, लेकिन आज भी उसके दिल की मासूमियत जिंदा थी। अर्जुन को उस हाल में देखकर कृषा ने धीरे से कहा, तुम बहुत बुरे हो युग, तुमने मेरे भाई को उस गलती की सजा दी है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। अर्जुन की आंखें सूजी हुई थीं। उसने अपनी अधखुली आंखों से सामने देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कई देर तक सामने देखने के बाद उसके मुंह से धीरे से निकला, बेटू कृषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृषा सेल के बिल्कुल पास चली गई। अर्जुन भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, हालांकि इन सब में उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके वो सेल के दरवाजे के पास आया और कृषा को देखकर रोते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? चली जाओ यहाँ से। दादू ने प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें युग के पास वापस कभी नहीं भेजेंगे, फिर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? क्या दादू ने युगराना से किसी तरह का सौदा किया है मुझे छुड़ाने के लिए? अर्जुन रोते हुए बोल रहा था। उसकी आवाज ने कईयों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से कुछ कैदी कृषा की तरफ देख रहे थे। कृषा ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, दादू ने किसी तरह का सौदा नहीं किया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। युग को नहीं पता मैं यहाँ हूँ। मैं आपको यहाँ से वापस लेकर जाऊंगी। तुम जानती हो ये पॉसिबल नहीं है, तो जिद मत करो। इससे पहले कि यहाँ कोई आए, चली जाओ यहाँ से, अर्जुन ने कहा और कृषा से दूर होने लगा। तभी कृषा ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने कृषा की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। कृषा की आंखों में देखकर अर्जुन समझ गया था कि अब वो पहले वाली कृषा नहीं रही है। उसकी बेटू, जिसे उसने काफी प्यार से पाला था, वो काफी बदल चुकी है। अर्जुन ने कृषा की तरफ देखकर उसे समझाते हुए कहा, जानता हूँ दादू ने तुम्हें बदल दिया होगा, पर मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी दूर चलकर जा सकूं। तुम मुझे नहीं ले जा सकती। अपनी जान खतरे में मत डालो। बेहतर होगा तुम भी चली जाओ। कृषा अर्जुन को कोई जवाब देती उससे पहले कृषा की घड़ी में से एक आवाज आई, कृष यू हैव 5 मिनट्स, तुम जहां भी हो अभी के अभी दरवाजे के पास पहुंचो। 5 मिनट बाद सभी कैमराज ऑन हो जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड जिस टाइम ड्यूटी एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे। ये अच्छा मौका है कि तुम उनकी एब्सेंस में बाहर निकल सकती हो। वो माइक था जो कृषा के लिए युग के विला के कैमराज और बाकी चीजों का ध्यान रख रहा था। जैसे ही उसने उसका अलर्ट मैसेज सुना, कृषा अर्जुन की तरफ देखने लगी। उसकी हालत वाकई चलने जैसी नहीं थी और 5 मिनट में कृषा उसे किसी भी हाल में विला के दरवाजे तक नहीं ले जा सकती थी।
अर्जुन को बचाने के लिए कृषा युग के विला की हाई सिक्योरिटी को तोड़कर अर्जुन के पास स्पेशल सेल तक पहुंची थी। कृषा के पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम था और वो आधे घंटे में से 25 मिनट बीत चुके थे। बचे हुए 5 मिनट में उसे अर्जुन को बाहर तक ले जाना था, लेकिन अर्जुन के साथ इतना टॉर्चर हुआ था कि वो अब इतनी दूर चलकर नहीं जा सकता था। कृषा का काम संभाल रहे माइक ने जब उसे मैसेज भेजा तो कृषा के पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन भी उसे यही समझा रहा था कि कृषा वहां से चली जाए। अलर्ट मैसेज अर्जुन ने भी सुना था। उसने कृषा की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम मुझे यहां से निकाल लोगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। प्लीज यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता तुम यहां फंस जाओ। मैं ऑलरेडी फंसा हुआ हूं। हम दोनों यहीं अटक गए तो दोनों ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। कृषा ने एक नज़र अर्जुन की तरफ देखा। उसके चोट के निशान और उनसे निकलता खून देखकर कृषा को युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो इस वक्त उसके सामने होता तो कृषा जरूर उसकी जान ले लेती। कृषा के पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं आपको यहां से लेकर ही जाऊंगी। माइक सब कुछ मैनेज कर लेगा। आपको यहां से ले जाए बिना मैं इस जगह से बाहर नहीं निकलने वाली। यहां अंदर आने का मौका। अर्जुन को बचाने के लिए कृषा युग के विला की हाई सिक्योरिटी को तोड़कर अर्जुन के पास स्पेशल सेल तक पहुंची थी। कृषा के पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम था और वो आधे घंटे में से 25 मिनट बीत चुके थे। बचे हुए 5 मिनट में उसे अर्जुन को बाहर तक ले जाना था, लेकिन अर्जुन के साथ इतना टॉर्चर हुआ था कि वो अब इतनी दूर चलकर नहीं जा सकता था। कृषा का काम संभाल रहे माइक ने जब उसे मैसेज भेजा तो कृषा के पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन भी उसे यही समझा रहा था कि कृषा वहां से चली जाए। अलर्ट मैसेज अर्जुन ने भी सुना था। उसने कृषा की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम मुझे यहां से निकाल लोगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। प्लीज यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता तुम यहां फंस जाओ। मैं ऑलरेडी फंसा हुआ हूं। हम दोनों यहीं अटक गए तो दोनों ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। कृषा ने एक नज़र अर्जुन की तरफ देखा। उसके चोट के निशान और उनसे निकलता खून देखकर कृषा को युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो इस वक्त उसके सामने होता तो कृषा जरूर उसकी जान ले लेती। कृषा के पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं आपको यहां से लेकर ही जाऊंगी। माइक सब कुछ मैनेज कर लेगा। आपको यहां से ले जाए बिना मैं इस जगह से बाहर नहीं निकलने वाली। यहां अंदर आने का मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। कृषा ने वहीं पर रुकने का डिसाइड किया और वहां से जाने लगी। अर्जुन ने उसे पीछे से चिल्लाकर कहा, प्लीज बेटू मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो इंसान हैवान है और अब तक तुमने उसका असली चेहरा नहीं देखा है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। वो मुझे मार देगा। उसने कहा था कि जिस दिन उसे तुम मिल गई वो मेरी जान ले लेगा। कृषा ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके इरादे पक्के थे और वो जानती थी कि उसे आगे क्या करना था। स्पेशल सेल से बाहर निकलते वक्त कृषा ने अपने वॉच में एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए माइक को भेजा। उसने मैसेज में कहा, मैं विला में ही रुक रही हूँ। हम जानते हैं युग राणा का ध्यान कब और कैसे भटकाना है। अगली बार जब फिर से तुम उसके कैमरा ज्यादा से ज्यादा एक घंटे तक बंद कर पाओ, उस दिन मुझे बताना। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम है। वहीं माइक ने कृषा का मैसेज सुना तो वो सिर पकड़कर बोला, ये लड़की पागल हो गई है। मिस्टर सिंघानिया ने इसे अच्छे से समझाया था कि माफियाज में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, लेकिन ये आज भी नहीं बदली। कभी कभी लगता है इसने ट्रेनिंग 7 पड़ावों को फिर से हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए ली है। माइक के पास कृषा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो अपने काम में लग गया। पिछले 2.5 सालों में कृषा जो ट्रेनिंग ले रही थी, इसमें माइक उसका ट्रेनर, मेंटोर और मैनेजर था। वो लगभग 28 साल का था, जिसके गोल्डन ब्राउन हेयर और येलोइश ब्राउन आईज थी। माइक हैकिंग में मास्टर था और उसी ने कृषा का युग के विला में जाना मैनेज किया था। कृषा की ट्रेनिंग ठीक से पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अर्जुन को बचाने के लिए निकल चुकी थी। इस बारे में आदित्य सिंघानिया अभी तक अनजान थे और माइक इस चिंता में डूबा था कि वो आदित्य सिंघानिया को कैसे संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ युग के विला में फंसी कृषा जानती थी कि उसे इस वक्त कहाँ जाना था। वो 30 कदमों से चलती हुई सबसे छुपते छुपाते विला के अंदर आई और लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। कृषा ने 4th फ्लोर का बटन दबाया और खुद से धीरे से कहा, बाथरूम्स में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन मैं किसी भी कमरे में घुसी तो कैमरा में कैप्चर हो जाऊंगी। उसके अलावा युग के फ्लोर पर भी ज्यादा कैमरास नहीं है और उसके रूम के हिस्से में तो बिल्कुल नहीं। मुझे वहीं पर रहना होगा। कृषा ने अपने रहने की जगह निकाल ली थी। वो इस वक्त अपने ही कमरे में जा रही थी। बचे हुए 5 मिनट भी पूरे हो चुके थे और कृषा युग के रूम में पहुंच चुकी थी। कृषा युग के साथ वहां ज्यादा दिन तक नहीं रही थी। उसने एक नज़र कमरे की तरफ देखा तो वो बिल्कुल पहले की तरह ही था। वहां कुछ नहीं बदला था, सिवाय उनके वेडिंग फोटो के। सामने एक बड़ा सा फोटोग्राफ लगा था जो कृषा और युग की शादी का था। कृषा ने उस फोटो को देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी। पिछले 2.5 साल बाद वो पहली बार युग की फोटो तक देख रही थी। वो उसे देखकर उसमें खोसी गई थी और उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थीं। कृषा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो सुबकते हुए बोली, नहीं कृषा, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। इन 2.5 सालों में मैंने अपना सब कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। अर्जुन भैया की हालत बहुत खराब है, उन्हें यहाँ से निकालना जरूरी है। बोलते हुए कृषा ने युग की फोटो की तरफ देखकर कहा, तुम चाहते तो आराम से मुझे ढूंढ सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं ढूंढा। फिर मेरे भाई पर गुस्सा उतारने की क्या जरूरत थी तुम्हें युग? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने उनकी हालत बहुत खराब कर दी है। कृषा ने खुद को संभालने के लिए वहां रखा पानी पिया। कृषा कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी और ना ही उसके पास कमजोर पड़ने का ऑप्शन था। कृषा ने तुरंत ही खुद को संभाला और पुरानी यादों से बाहर निकल कर आई। खुद को शांत करने के बाद कृषा ने देखा उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लग गई थी। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, फर्स्ट आई नीड अ शावर। बोलते हुए वो बाथरूम में गई और नहाने के लिए अपने कपड़े निकाले। युग के एब्सेंस में वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसी का कमरा हो और हमेशा से वो इस घर में रहती हो। ट्रेनिंग टाइम में कृषा ने इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया था कि मुश्किल सिचुएशन में फंसने के बाद कैसे बचकर निकलना है, इसलिए बेफिक्र होकर उसने वहां रहने का सोचा और अब युग के कमरे तक पहुंच गई थी। शावर लेने के बाद कृषा ने टॉवल बांधकर अपने कपड़ों को वॉश करके ड्राइंग मशीन में डाल दिया था। कुछ ही देर में उसके कपड़े सूख गए थे। कृषा उन्हें लेकर बाहर की तरफ आने लगी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसी के साथ कृषा वहीं पर रुक गई और दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगी। पता करो वो लड़की कौन थी, मुझे सुबह तक उसकी हर एक डिटेल चाहिए। वो युग था जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कृषा बाथरूम में थी, उसे छुपने का मौका नहीं मिला और युग अपने कमरे तक पहुंच गया था। युग की आवाज़ इतने टाइम बाद सुनने के बाद कृषा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसके इमोशंस उसकी सारी ट्रेनिंग पर हावी हो रहे थे।